ಗೋವಿಂದ ಗೋಪೀನಾಥ ಮದನ ಮೋಹನ ಶ್ಯಾಮ ಕುಂಡ ರಾಧಾ ಕುಂಡ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ ಕಾಲಿಂದೇ ಮುನಾ ಜಯ ಜಯ ಮಹಾವಾನ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ ಶಿಘಾಟ ವಂಶೀ ವಟ ದ್ವಾದಶ ಕನಾನ ಜಹಸ ಬಲೀಲಾ ಕೊಯ್ಲೊ ಶ್ರೀನಂದಾನಂದಾನ ವಟ ದ್ವಾದಶ ಕನಾನ ಜಹಸ ಬಲೀಲಾ ಕೊಯ್ಲೊ ಶ್ರೀನಂದ ಯಶೋದ ಜಯ ಜಯ ಗೋಪಗಾನ ಶ್ರೀದಾಮಾದಿ ಜಯ ಜಯ ಧೇನುವಾಸ ಗಾನ ಯಶೋಧಾ ಜಯ ಜಯ ಗೋಪಗಾನ ಶ್ರೀದಾಮಾದಿ ಜಯ ಧೇನುವಾಸ ಗಾನ ಜಯ ವೃಷಭಾನು ಜಯ ಕೀರ್ತಿದಾ ಸುಂದಾರಿ ಜಯ ಪೌರ್ಣಮಾಸಿ ಜಯ ಅಭಿರನಗಾರಿ ವೃಷಭಾನು ಜಯ ಕೀರ್ತಿದಾ ಸುಂದಾರಿ ಅಭಿರನಗಾರಿ ಜಯ ಜಯ ಗೋಪೀಶ್ವರ ವೃಂದಾವನ ಮಾಜ ಜಯ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಖ ಬಟು ದ್ವಿಜರಾಜ ಗೋಪೀಶ್ವರ ವೃಂದಾವನ ಮಾಜ ಕೃಷ್ಣ ಸಖ ಬಟು ದ್ವಿಜರಾಜ ಜಯ ರಾಮ ಘಾಟ ಜಯ ರೋಹಿಣೀ ನಂದನ ಜಯ ಜಯ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಯಾತ ಜಾನ ಯ ರಾಮ ಘಾಟ ಜಯ ರೋಹಿಣೀ ನಂದನ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಯಾತ ಜಾನ ಜಯ ದ್ವಿಜ ಪತ್ನಿ ಜಯ ನಾಗಕನ್ಯಾ ಗಾನ ಭಕ್ತಿ ತೇಜ ಹಾರ ಪೈಲೊ ಗೋವಿಂದ ಚರಣ ನಾಗಕನ್ಯಾ ಗಾನ श्रीरास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोराम मंडल जय जय राधा श्याम जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार परकिया भावे जा व्रजते प्रचार श्री जानवी पाद पद्म कोरिया स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन अनवी पाद पद्म कोरिया स्मरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कृष्ण जय वृंदावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे चंद्र राधा चंद्र राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिता श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद गोविंद हरि गोविंद श्रीनिवास गोविंद जय प्रभु पादा प्रभु पाद प्रभु पादा जय प्रभु पादा जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परम हंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 श्लोक क्रमांक 15 और 16। यहाँ पर 16 श्लोक लिखा है। अंतपुरम च हृदयम् विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणे। अन्तपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणे। अन्तःपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणे। तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणे। माताजी शब्दार्थ अंतःपुरम निवास च तथा हृदयम हृदय विशुचिः विशुचिन विशुचिन नामक दास मनः मन उच्यते कहलाता है, तत्र वहाँ, मोहम मोह, प्रसादम संतोष, वा अथवा, हर्षम हर्ष, प्राप्नोति प्राप्त करता है, तत् मन का, गुणे प्रकृति के गुणों द्वारा। भाषांतर और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की भाषांतर। अंतःपुर हृदय का सूचक है, विशुचिन अर्थात सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला है। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं तो कभी संतोष तथा उल्लास। तात्पर्य, इस संसार में जीव का मन तथा बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं और इन गुणों की संगति के अनुसार मन इधर उधर जाने का आदि हो जाता है। उसी के अनुसार हृदय संतोष उल्लास या मोह का अनुभव करता है। वास्तव में जीव निष्क्रिय रहता है, प्रकृति के गुण ही मन तथा हृदय पर कार्य करते हैं और जीव उनके फलों का भोग करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, प्रकृते क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। मोहग्रस्त आत्मा प्रकृति के तीनों गुणों के वश में होकर अपने को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोमीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना कान्वितांश। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वंशाकल्पतरूभश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और हम पुरंजन आख्यान से यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और इस आख्यान का यह अंतिम अध्याय है जिसका शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन वर्य के मध्य वार्तालाप। तो 29वां अध्याय है, अध्याय क्रमांक 26 से आख्यान चालू हुआ है। 26, 27, 28 इन तीन अध्यायों में नारद मुनि प्राचीन भरियों को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं और पुरंजन अर्थात जीवात्मा का यह आख्यान है, मतलब यह सभी के लिए लागू है। हम देखते हैं कि शिवजी के द्वारा महाराज प्राचीन भरी के पुत्र प्रचेता का उद्धार तो हो गया, फिर नारद ने सोचा कि बच्चों का उद्धार हुआ है, अभी पिताजी के लिए कुछ करते, तो पिताजी के घर पे जाते हैं। घर मतलब वो तो राजमहल था। तो जब नारद मुनि जाते हैं कि लेकिन महाराज प्राचीन भरी तो बहुत ही कर्मकांड में लगे हुए हैं, तो जो व्यक्ति कर्मकांड में लगा होता है उसकी इच्छा होती कि मैं स्वर्ग जाऊं और वहां पर जाके अलग अलग प्रकार का भोग करूं। और गीता में कहा गया है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरूत चेतसाम व्यवसायित्मी कहा बुद्धि समाधो नामिच्छते। तो जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में लगा होता है, जिसका मन भोगों में और ऐश्वर्य में लगा हुआ है, उसका मन साधारणतः भक्ति में लगता नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग वैराग्य का मार्ग है, इस जगत से अनासक्ति का मार्ग है। तो फिर नारद मुनि ने सोचा कि इनको डायरेक्ट भक्ति के बारे में मैं बताऊंगा तो वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो फिर उन्हें इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से या रूपक के माध्यम से कुछ तो बताना होगा, ताकि महाराज ये सकाम कर्म या कर्मकांड का मार्ग छोड़कर भक्ति मार्ग में लग सकते हैं, ऐसा नारद मुनि ने सोचा। और फिर महाराज प्राचीन भर्यु को माध्यम बनाकर नारद मुनि समस्त जीवात्माओं को ये आख्यान बता रहे हैं कि किस प्रकार जीव इस जगत में फंसा हुआ है, और फिर मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ इस जगत में दुख भोग रहा है, इस तरह का आख्यान बता रहे हैं। और ये हम सबके लिए लागू है, और जो भी व्यक्ति ये आख्यान पढ़ेगा वो उसको एक उत्सुकता है कि आगे क्या है, आगे क्या है, और वो पूरा पूरी तरह आख्यान सुन लेगा। और भगवान की दया से ये पूरा आख्यान उन्होंने तो सुन लिया। कभी कभी हमें कुछ चीज अगर समझ में आती नहीं तो हम लोग उसको बोलते हैं अरे बस करो अभी, लेकिन इतना आकर्षक रूप से नारद मुनि ने इस जीव की कहानी को या महाराज प्राचीन भर की कहानी को उनको ही बताया कि वो बिल्कुल पूरी तरह सुनते ही रहे। और पूरा सुनने के बाद बोले कि महाराज, नारद जी को बोले कि आपने बहुत सुंदर आख्यान बताया है, लेकिन जिनका मन सकाम कर्म में लगा हुआ है, कर्म कांड में लगाया है, उनको ये पूरी तरह समझ में आता नहीं है। तो मुझे भी पूरी तरह समझ में आया नहीं है, आपने बहुत कुछ बताया, आकर्षक रूप से बताया, लेकिन मुझे समझ में आया नहीं। तो ये नम्रता है उनकी, और हो सकता है नहीं भी समझ में आया हो, तो मुझे पूरी तरह और एक बार स्पष्ट रूप से समझाओ। तो पूरा 3-4 अध्याय में जो नारद मुनि ने बताया था, अभी नारद मुनि उसी को ही समझाएंगे, और उसमें जो पात्र बताए थे उन्होंने उस पात्र को खुलकर बताएंगे। और हमको तो प्रभा जी की कृपा से उन पात्रों को तो प्रभा जी ने समझा दिया उस समय, लेकिन वहां पर वो खाली श्लोक बोलते जा रहे थे नारद मुनि, परपोर्ट शायद उन्होंने पूछा उस समय नहीं पूछा होगा, बताया नहीं। तो अभी उन बातों को जो नारद मुनि ने अलग अलग नामों से बताया गया था, अभी उसी को ही नारद मुनि यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये भी अध्याय बहुत बड़ा अध्याय, कम से कम 85 श्लोक, तो हम लोग 2.5-3 महीने अभी इसका स्पष्टीकरण सुनेंगे, मतलब जो हमने सुना था पिछले 3-4 महीने में उसी का अभी रिवीजन होगा, है ना। तो क्योंकि ये आख्यान इतना महत्वपूर्ण है, हम देखेंगे कि आने वाले 5वें स्कंद में भी जब महाराज जड़ भरत और रहुगुना का भी आख्यान होता है, और महाराज जड़ भरत रहुगुना को इस भौतिक जगत के बताते हैं, भव 8वीं है ना उसका अध्याय है, 5वें अध्याय 5वें स्कंद में ये भौतिक जगत का जंगल, तो वो भी नारद मुनि ने वहां पर महाराज जड़ भरत, ये तो सब महाजन लोग है, नारद मुनि भी महाजन है, जड़ भरत भी महाजन है, जो भी शुद्ध भक्त होता है महाजन होता है, तो वो भी उनको रूपक के माध्यम से कहते हैं। यहाँ पर महाराज प्राचीन भरी है और वहां पर रहुगुनाथ है। राजाओं के दिमाग में भक्ति का आख्यान जल्दी जाता नहीं है ना, उनको अप्रत्यक्ष रूप से समझाना पड़ता है। वो भी बोलते हैं कि आपने क्या क्या बताया मुझे समझ में आया नहीं। तो 5वें स्कंद के 13वें अध्याय में वो रूपक मतलब वो आख्यान आता है, फिर एक बार जड़ भरत जी उनको स्पष्ट रूप से कहते हैं, उसमें भी 2 अध्याय है। तो जो भी महत्वपूर्ण चीज है उसका रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति की जाती है समझाने के लिए, तो हमारे लिए अच्छा है। तो यहां पर वर्णन आ रहा है
अभी सॉरी मैंने 15वां श्लोक नहीं पढ़ा, उसको भी पढ़ लेते हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, शशि नारद मुनि की, अबला शशि गौर निताई की, सॉरी। तो ये 15वां श्लोक आपको उच्चारण करने, वैशम नरकम पायो लुब्ध को अंधो तुम्हें सुनु हस्त पादोपमास्ताभ्याम युक्तो याति करोति च। श्लोक 15वां है भाषांतर। जब यह कहा जाता है कि पुरंजन वैशसन जाता है तो उसका अर्थ है कि वह नरक जाता है, उसके साथ लुब्धक रहता है जो गुदा नामक कर्मेंद्रिय है। इसके पूर्व मैंने दो अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था, इन्हें हाथ तथा पाव समझना चाहिए। जीव हाथ तथा पाव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता है और इधर उधर जाता है। यह 15वां श्लोक भी आराज और 15वां श्लोक, 15वां 16वां श्लोक के पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज के इस 16वें श्लोक में जहां पर प्रभाजी का तात्पर्य है, इसमें भाषांतर में कहा गया अंतपुर हृदय का सूचक है, विशुचिन मन को बताने वाला है, जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं, कभी संतोष तथा उल्लास। तो तात्पर्य में सुंदर तृतीय से प्रभा जी बताते हैं कि संसार में जीव का मन तथा बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते रहते हैं और इन गुणों की संगति के अनुसार मन इधर उधर जाने का आदि हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभा जी ने तात्पर्य में एक गीता से श्लोक कोट किया है, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं और हम सबको बता रहे हैं कि बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के इतना वश में रहता है कि प्रकृति के गुण उसके ऊपर हावी रहते हैं। और ये किसके लिए है? बद्ध जीव के लिए, मुक्त जीव के लिए नहीं है। जब जीव समझ लेता है कि मैं तो जीवात्मा हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं भगवान का अंश हूं और मैं दिव्य हूं और मैं आध्यात्मिक हूं और प्रकृति जो जिस प्रकृति के अधीन में हूं, ये तो भौतिक है और ये भौतिक मतलब ये इन्फीरियर क्या बोल सकते हैं हम, हाँ, निकृष्ट है। मैं उत्कृष्ट हूं और प्रकृति निकृष्ट है, तो प्रकृति मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती है ना? मुझे प्रकृति के ऊपर हावी होना है और इन गुणों को पार करते हुए मुझे भगवान की सेवा करना है। जब जीव अपनी पहचान कर लेता है और अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ लेता है, तब प्रकृति के गुण उसके ऊपर कार्य नहीं करते। वो कौन सा श्लोक है गीता में? अव्यभिचारी न माम चो यो अव्यभिचारी न भक्ति योगे न सेवते सहगुणान समतित्ते त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब जीव अव्यभिचारी मतलब शुद्ध भक्ति में लग जाता है तो प्रकृति के गुण उसके ऊपर कार्य नहीं करते। तो जब कहा जाता है कि प्रकृति के गुण के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं, तो वो बद्ध जीव के लिए लागू होता है, जो कि अज्ञान में है, जो ये समझता है कि मैं शरीर हूं और मैं ये इंद्रिय से बना हुआ मैं शरीर हूं और उसी अज्ञान में रहता है, तब उसके ऊपर प्रकृति के गुण कार्य करते हैं। प्रभाजी तो यहां पर लिखते हैं कि वास्तव में जीव निष्क्रिय रहता है। कब? जब वो अज्ञान में रहता है। तो अज्ञान में है तो वो निष्क्रिय है ना, मतलब वो पूरी तरह से समझ रहा है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियों से बना हूं, तो फिर वो अपने को समझ ही नहीं रहा है तो फिर कार्य कैसे करेगा? निष्क्रिय इस भाव से प्रभा जी बोल रहे हैं कि वो आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ नहीं है। जीवात्मा आध्यात्मिक होकर भी अज्ञान के कारण, मोह के कारण वो भौतिक कार्य में लगा हुआ है। उसको लगता है कि मैं भौतिक पिंड हूं, मैं भौतिक जगत का हूं और भौतिक वस्तु से ही मुझे आनंद प्राप्त करना है, पूरी तरह से भौतिक जगत में रत रहता है। तो भौतिक आध्यात्मिक होते हुए भी भौतिक कार्य में लगा हुआ है, इसलिए प्रभाजी यहां पर उसको निष्क्रिय कहा जाता है। तो जीवात्मा जब अपनी पहचान कर लेता है, भगवान के साथ अपना संबंध समझ लेता है, और उस पहचान के साथ जब कार्य करता है तब उसका सक्रिय जीवन शुरू होता है, नहीं तो उसका निष्क्रियता ही चलता रहता है ना। तो कभी कम करता है, अरे प्रकृति के गुण कैसे कार्य कर रहा है, कार्य तो मैं कर रहा हूं है ना, सब कुछ मैं कर रहा हूं है ना, लेकिन वो मैं कौन है। जब व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर हूं तो फिर तो वो तो मतलब अज्ञान हो गया है। तो अज्ञान के कारण प्रकृति के गुण उसके ऊपर कार्य करते हैं। प्रकृति क्रियमानहानि, सारे कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं, और ये सच है ना। हर यहां पर बद्ध जीव विविध रूप से कार्य कर रहा है, कोई सतोगुण के प्रभाव में आकर कार्य कर रहा है, कोई रजोगुण के प्रभाव में आकर कार्य कर रहा है, कोई तमोगुण के प्रभाव में आकर कार्य कर रहा है। भक्तों को लगता है अरे भक्ति कितनी आसान है ना, भगवान के नाम का जप करना है और प्रसाद ग्रहण करना है, भगवान के नाम नृत्य करना है, तो सब लोग क्यों नहीं करते ऐसा है ना। अरे एक पुस्तक, छोटा सा पुस्तक उनको देने के लिए इतना सर फोड़ना पड़ता है, फिर भी लेता नहीं वो। सामने हमको लगता है कि अरे ये समाचार पत्र पढ़ रहा है, उसको पढ़ने में बड़ी रुचि है, चलो एक पुस्तक उसके सामने लेके जाते हैं, तो ऊपर देखता है वो, अरे कौन आया है, मैं अपना पेपर समाचार पत्र पढ़ते रहता है, क्योंकि वो तमोगुण के गुण के साथ संग कर रहा है, उसको भौतिक जगत के समाचार अच्छे लगने नहीं है। इस पुस्तक में तो आध्यात्मिक जगत के समाचार है, वो क्या पढ़ेगा वो है ना, उसको रुचि नहीं है, वो निकल जाए, वो बोलता है नहीं आगे जाओ। हमको लगता है कितना रुचि है पढ़ने में, लेकिन उसकी पढ़ने में रुचि है लेकिन गंदगी पढ़ने में रुचि है, क्योंकि वो तमोगुण के साथ संग कर रहा है ना। बस उसको प्रसाद खिलाना है, उस समय प्रसाद शायद ग्रहण कर लेगा वो, प्रसाद ग्रहण करके अगर शुद्ध सत्व का संग करेगा तो कुछ समय के बाद हो सकता है वो कुछ भक्तों के, अलग भक्तों के द्वारा पुस्तक ग्रहण करेगा है ना। तो भक्त बड़े चतुर होते हैं, पुस्तक नहीं ले रहा तो प्रसाद तो ले लो है ना। कभी कभी भक्त बोलते ठीक है पुस्तक नहीं, हरे कृष्ण बोल दो एक बार, अगर कोई थोड़ा भाग्यवान है तो एक बार हरे कृष्ण बोलेगा तो उसकी भक्ति शुरू हो जाती है, और उतना बड़े भाग्यवान नहीं है तो भक्त इतने जोर से हरे कृष्ण बोल देता है कि वो सुन लेता है आगे चल जाता है ना। अगर कोई बोलता नहीं तो यही बोल लेता है ना, तो ताकि ये सुनेगा। तो ये प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि जो लोग बोलना भी नहीं चाहते उनको सुना देते हैं, क्योंकि आंख है ना, कान पे तो हाथ नहीं रख सकता हूं है ना। तो इस तरह ये नारद मुनि बड़ी करुणावश प्राचीन भरियों को ये भक्ति का प्रवचन सुना रहे हैं, जीव का आख्यान उनको सुना रहे हैं। और किस तरह से प्राचीन बरी महाराज प्राचीन बरी भक्ति में आए ये नारद मुनि को आशा है, हालांकि वो जानते थे कि लाना कठिन है इनको, प्रयास कर लेते हैं। तो भक्त कभी प्रयास नहीं छोड़ता है, प्रयास हमेशा करता रहता है, कई बार चार घंटा पुस्तक विस्तरण करने के बाद भी एक बुक भी नहीं जाता है, तो उसको लगता है मैंने किया। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमने पुस्तक वितरण कार्य किया, चार घंटे किया, इनने पुस्तक नहीं लिया, लेकिन भगवान ने कोट मतलब नोट कर लिया है कि चार घंटा तुमने पुस्तक वितरण किया है। भक्त की मेहनत कभी कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। चार घंटा घुमा तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है ना, और उनकी स्वीकृति बढ़ गई है। भौतिकवादी दूसरे भौतिकवादी का देखता है तो उनकी स्वीकृति नहीं बढ़ती है, लेकिन जब भौतिकवादी व्यक्ति किसी भक्तों को देख लेता है तो उसकी स्वीकृति बढ़ जाती है, क्योंकि भक्त का पोशाक देख लेता है, उसके गले में कंठी और तिलक और उसका आचरण सब देख लेता है तो उसकी स्वीकृति बढ़ लेती है। और हो सकता है उसको बोल नहीं रहा है लेकिन मन में स्मरण आता है शायद हरे कृष्ण वाला है ना, तो मन में तो हरे कृष्ण का नाम आ गया उसके, भगवान मन में भी लिया नाम तो भी ग्रहण कर लेते हैं, मन में भी हरे कृष्ण का स्मरण कर लिया। ये हरे कृष्ण वाले घूमते रहते हैं, क्या इनको काम नहीं, नहीं पता नहीं, लेकिन हरे कृष्ण का स्मरण कर रहा है तो उसकी स्वीकृति बढ़ जाती है। तो ये हमारे संस्था का प्रभुपाद जी ने संस्था का निर्माण किया है ताकि लोगों की स्वीकृति बढ़ती जा रही है ना। प्रसाद वितरण हो रहा है, पुस्तक वितरण हो रहा है, भक्त घूम रहे हैं, कई सारे गृहस्थ भक्त भी तिलक लगा के संसार में घूमते रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं, और ब्रह्मचारी लोग नहीं जाते ना ज्यादा बाहर, मंदिर में रहते हैं तो गृहस्थ लोग तो उनको ड्यूटी जाना होता है तो क्या करेंगे, थोड़ा घर में बैठेंगे तो काम चलने वाला है। ड्यूटी जाते हैं तो कभी कोई तिलक नहीं लगाते हैं, कभी लगाते हैं लेकिन कंठी तो रहता है उनका, कंठी निकालते नहीं, तो कई लोग कंठी का तो दर्शन कर लेते हैं। हमारी कंठी पंडरपुर जैसे नहीं है कि वो अंदर रहती है, दिखती नहीं है। प्रभु जी ने बोले कंठ के द्वारा लगाओ, है ना। तो इसके लिए कंठ के द्वारा लगी हुई है, इसके लिए कंठी माला कहा गया है ना। अगर माला कंठ के साथ नहीं है तो उसको सही तरह से हम कंठी माला नहीं बोल सकते। कई बार कई कई ऑफिस में अलाउड नहीं होता तो भक्तगण हमारे अंदर रखते हैं, लेकिन भारत में तो प्रायः अलाउड कर ही देते हैं। तो ये भक्त का जो जीवन है बड़ा अद्भुत जीवन है और परोपकार का जीवन है ना। उसका जीवन परोपकार के, दूसरे के उद्धार के लिए ही बना हुआ है। खुद का तो उद्धार वो कर ही रहा है और दूसरे के उद्धार के लिए भी लगा हुआ है ना। प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए बताया गया है क्या है कि उसको अपना जन्म सार्थक करना है और दूसरों का भी जन्म सार्थक, मतलब उसको भी परोपकार करना है, उनको भी इस जो नारद मुनि ने यहाँ पर प्रचार किया है महाराज को, उसमें से कुछ चीजें हमको उनको भी कहना है। तो आज के इसमें कहा गया है कि अंतपुर हृदय का सूचक है, हृदय। और यहां पर प्रभु जी लिखते हैं कि जीव मन तथा बुद्धि, जीव की मन तथा बुद्धि प्रकृति के गुणों द्वारा आचरित रहती है। तो ये गुणों के बारे में बता रहा था, जैसा हम संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है, जैसा संग वैसा रंग, जैसे जैसे गुण का हम संग करते हैं उस तरह का आचरण जीव प्रदर्शित करता है। तो प्रायः भारत में सतोगुण का वातावरण हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि भारत में जगह जगह मंदिर है और प्रायः भारत में गांव में भी शहर में भी लोग सुबह सुबह के समय में देव पूजा करते रहते हैं, कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं, या तो साधारणतः भारत में सुबह का समय और प्रायः भारत में सतोगुण का वातावरण हुआ करता था, अभी कली के कारण वो बिगड़ता जा रहा है, लेकिन सुबह के समय फिर भी लोग कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य करते रहते हैं। कुछ गलत कार्य तो साधारणतः सुबह के समय नहीं करते हैं, तो सुबह का समय लोग सतोगुण में रहते हैं तो सतोगुण के कार्य होते हैं। उसके बाद 9 बजे के बाद रजोगुण शुरू होता है, तो सबके मन में लगता है कि मुझे कार्य करना है, कुछ कार्य करना है, ऑफिस जाना है ना, और या तो कंपनी जाना है, ऑफिस जाना है, तो वो 9 बजे के बाद वो रजोगुण शुरू हो जाता है। तो 6 बजे तक वो चलता है रजोगुण, कार्य करना है, फिर 9 बजे से लेकर 6 बजे तक कार्य कर थक जाता है वो, तो फिर 6 बजे के बाद सूरज ढल जाता है तमोगुण शुरू हो जाता है। उसको लगता है मैं थक गया हूँ, अभी कुछ मनोरंजन करना चाहिए, कुछ फिल्म देखने जाना चाहिए, या कुछ नशा करना चाहिए, या कुछ तो ऐसा मनोरंजन के लिए वो सोचता रहता है ना, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव आ गया ना, तो तमोगुण का संग करता है। मतलब व्यक्ति सुबह सतोगुण का संग करता है तो थोड़ा सतोगुणी कार्य करता है, दोपहर के समय रजोगुण का संग करता है तो कुछ क्रियाशीलता उसमें आ जाती है, शाम के समय तमोगुण का संग करता है तो उसको कुछ निद्रा आलस्य या नशापान करने के लिए या ऐसा कुछ लगता है। तो बद्ध जीव ऐसा गुणों के द्वारा कार्य करता है, सुबह के समय उसको सोने की इच्छा नहीं होगी क्योंकि सतोगुण के प्रभाव में है, वो गुण के प्रभाव में है पूरा, तो सारे कार्य गुणों के द्वारा हो रहे हैं, है ना। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, तो अहंकार के वश वो सोचता है कि मैं करता हूं, ये कर्ता की भावना जो है ये अहंकार की वजह से होती है। तो अहंकार का मतलब ही है कि खुद की पहचान शरीर के साथ करना, यह अहंकार। और फिर खुद की पहचान शरीर के साथ करने के बाद फिर शरीर संबंधित वस्तु आती है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है ना, ये मेरे लोग हैं, तो उसको फिर ममकार कहा जाता है, मेरे। तो अहंकार से ही ममकार आता है, तो ये दोनों के वश में रहकर ही कार्य करता है ना। अहंकार मतलब अपने आप को शरीर समझना, ममकार मतलब शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना समझना, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, है ना। तो इस तरह जीव प्रकृति के गुणों के वश में अज्ञान में रहते हुए कार्य करता है। जैसे हम देखते 3 भाई थे, एक रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो विभीषण ने हमेशा सतोगुण का संग किया, उसने भी तपस्या की, लेकिन तपस्या करके क्या होना, मांगा कि मुझे धार्मिकता चाहिए, तो उन्होंने धार्मिकता मांगी। धार्मिक रहने के लिए व्यक्ति को सतुगुण में रहना है, तो सतुगुण का संग करने इस कारण विभीषण हमेशा धार्मिक रहे, लंका में रहते हुए भी वो धार्मिक जीवन जिए। हनुमान जी जब लंका में गए तो उनको एक ही भक्त मिला, वो था विभीषण, और बाकी तो सब असुर थे। तो विभीषण में सतोगुण का संग किया और रावण रजोगुणी था, उसने भी तपस्या की, बहुत कठोर तपस्या की, लेकिन तपस्या के बल पे उसने मांगा क्या, बहुत शक्ति मांगी उन्होंने, और शक्ति प्राप्त करके उन्होंने फिर देवताओं को सताना शुरू किया, मनुष्य को सताना, सबको सताना शुरू किया, और पूरा तीनों लोकों में जाकर रजोगुण में रह के कार्य करता था, है ना। रजोगुण मतलब यौन सुख, तो हमेशा जहां पर उसको सुंदर स्त्री दिखती थी उसको पकड़ के अपने राज्य में लाता था। लेकिन जब उसने भगवान की पत्नी के ऊपर अपने नजर डाली तब उसका पतन शुरू हो गया, है ना। तो ऐसे ही रावण ने सीता का अपहरण किया, उसका पतन शुरू हो गया, अंत में उसको मरना पड़ा। तो रजोगुण के कार्य, रजोगुण का संकरण कारण वो रावण इस तरह कार्य करता था। और फिर कुंभकर्ण, उसने भी तपस्या की, लेकिन उस तपस्या का बदला क्या मांगा उसने, उसने बस निद्रा मांगी, मुझे सोना है। तो साल में 365 दिन सोता रहता था, एक ही दिन उठता था, और उठने के बाद तमोगुण कार्य करता था, इसको खाओ उसको खाओ, इसको मारो उसको करो, पूरा तमोगुण कार्य करता था। तो कुंभकर्ण ने तमोगुण का संग किया, इसलिए उसके कार्य सब तमोगुण होते थे। तो इस तरह जीव हमेशा प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कार्य करता है, इसलिए कभी कभी बद्ध जीव को कठपुतली कहा जाता है, है ना। आजकल तो कठपुतली जैसा कुछ दिखते नहीं हम, पहले गांवों में कठपुतली का खेल हुआ जाता था। सामने तो कठपुतलियां होती थी, पीछे उसका धागा खींचने वाले एक व्यक्ति होता था। तो जो जिसको पता नहीं है कि पीछे कोई व्यक्ति है जो धागों के द्वारा इस कठपुतली को नचा रहा है, उसको लग रहा था अरे ये कठपुतली कार्य कर रही है ना। लेकिन जो जानता है कि उसके पीछे आदमी है और उनको कठपुतली को नचा रहा है, तो कठपुतली अपने आप में कार्य करती नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कठपुतली कार्य कर रही है ना। पपेट जिस इंग्लिश में बोलते पपेट, पपेट शो होता था पहले, तो कठपुतली का जो शो होता था पहले, तो असल में बद्ध जीव कठपुतली है। ऊपर से हमको लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन बद्ध जीव कुछ कार्य नहीं कर रहा है, प्रकृति के पूरे वश में होकर कार्य कर रहा है। प्रभा जी एक और अलग उदाहरण देते हैं कि हवाई जहाज का। एक बार व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा तो उसके पास अभी कोई रास्ता नहीं है, उसको हवाई जहाज में बैठे रहना है। जब तक हवाई जहाज जमीन पर उतरता नहीं है वो विवश है हवाई जहाज में रहने के लिए, है ना। ट्रेन में बस में तो बीच बीच में रुक जाती है तो उतर जाते हैं हम, लेकिन हवाई जहाज में तो कोई चांस नहीं है उतरने का, है ना। आप हिलडुल भी नहीं सकते ज्यादा, ज्यादा ज्यादा टॉयलेट बाथरूम में जा सकते उतना ही बस, बाकी खिड़कियां भी छोटी छोटी होती उधर, है ना, खिड़की खोल भी नहीं सकते। ग्लास से जो देखना है देखना है, नीचे तो कुछ आपको कुछ बस मतलब पूरी तरह हम हवाई जहाज में बैठे तो पूरे विवश रहते हैं हवाई जहाज के साथ, खाली प्लानिंग कर सकते हैं। प्रभा जी बोलते हैं कि अगर उतरने के बाद हमें अगर सौभाग्य से उतर गया तो, है ना, उतरने का कोई गारंटी रहता नहीं। तो आज के लोगों को गारंटी हो गया, हरे कृष्ण वाले हैं, कोई चिंता नहीं है, ये लोग चालू होते हैं नरसिंह आरती गा लेते हैं तो हमको हम उतर जाएंगे, क्योंकि हरे कृष्ण वाले भी आजकल हवाई जहाज से प्रवास कर रहे हैं। तो इस तरह हवाई जहाज में बैठने के बाद व्यक्ति विवश हो जाता है। इसी तरह बद्ध जीव क्योंकि भगवान को भूला हुआ है और भगवान को भूलने के कारण इस प्रकृति का भोग करना चाहता है और माया का भोग करना चाहता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे जीव कृष्ण को भूल जाता है तुरंत वो प्रकृति के वश में आ जाता है, और प्रकृति का अर्थ है तीन गुण, तीन गुण में वश में आ जाता है, तो तीन गुण उसके ऊपर कार्य करते रहते हैं। तो ये गीता में बताते हैं कि कभी कभी रजोगुण और तमोगुण को मतलब मारकर सतोगुण प्रबल हो जाता है, कभी कभी सतोगुण तमोगुण को मारकर रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी कभी सतोगुण और रजोगुण को मारकर तमोगुण प्रबल हो जाता है। तो ये गुणों की चढ़ाई हमेशा हमारे चलती रहती है, और जब तक जीव इस गुणों के प्रभाव में है तब तक वो दुख भोगते ही रहता है। इसलिए इस जगत को, इस भौतिक जगत को जो तीनों गुणों से बना हुआ है, जीव हमेशा दुख में रहता है, क्योंकि प्रकृति जीव को एक अनंत आनंद प्रदान नहीं कर सकती है ना। प्रकृति के द्वारा जीव जिस तरह का आनंद लेता है वो मर्यादित है, लेकिन जीव अमर्यादित आनंद चाहता है। जीव की जो लालसा है आनंद प्राप्त करने की, वो अमर्यादित आनंद प्राप्त करने की है। इस भौतिक जगत में माया या प्रकृति के गुण जीव को बहुत ही मर्यादित आनंद प्रदान करती है, इसलिए जीव यहां पर दुखी रहता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को बहुत भूख लगी है और आपने एक आधा चपाती उसको दे दिया, तो आधा चपाती से क्या होने वाला, उसको बहुत भयंकर भूख लगी है। तो जीव क्योंकि उसका स्वभाव है शाश्वत ज्ञानमय आनंदमय, उसका स्वभाव है आनंदमय, इसलिए हमेशा आनंद की खोज में रहता है। लेकिन प्रकृति उसको आनंद दे नहीं पाती है, इसलिए और दुखी रहता है। जैसे अगर रेगिस्तान में कोई व्यक्ति गया, बहुत प्यासा है, और ऊपर से कोई अगर ये आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, और हेलीकॉप्टर आके उसको लगा कि अरे, और उसके ऊपर लिखा है कि मतलब वाटर टैंक ऐसा लिखा है उसके ऊपर, अरे बाप रे इतना सारा पानी आ गया, अभी मेरी प्यास बुझने वाली है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर उतरता है और एक बूंद पानी आपको देता है और फिर से उड़ जाता है, क्या करेगा? अरे तुमने मेरी तो इच्छा बढ़ाई थी, लेकिन एक बूंद पानी तुमने दिया और भाग गए, तो क्या किया? और प्यास उसकी बढ़ जाती है ना, थोड़ा सा एक बूंद बोलो या एक आधा ग्लास पानी उसको दे के क्या होने वाला है। तो उसी तरह जीव को लगता है कि इस भौतिक जगत में बहुत सारा आनंद है, मैं घर बांधूंगा, मैं कार लूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, और उसके सामने उसको लगता है कि मुझे आनंद बहुत मिलने वाला है। लेकिन अंत में उसके हाथ में क्या है, एक बूंद पानी मिलता है उसको, है ना। पूरा जीवन भर है ना उसको लगता है कि अभी मैं एक बड़ा घर लेता हूं, एक घर ले लेता है 70 लाख रुपए का घर लेता है, और फिर पूरा जीवन भर मेहनत करके पैसा भरते रहता है। घर लेने के बाद 4 दिन उसको आनंद आता है, 4 दिन बाद में सोसाइटी का बिल भरो और ये भरो वो भरो, उसके बाद उसको आनंद नहीं। अरे घर में आके भाई, कुछ पहले भी मैं एक वन रूम किचन में रहता था, तभी मैं ऐसा ही था, अभी 2 BHK में आया अभी भी ऐसा ही हूँ। 4 दिन आनंद आया मुझे, लेकिन 4 दिन के बाद आनंद गया, अभी उसका पेमेंट भरते भरते ही मेरे को दुख आ रहा है। तो ये ही जगत का है। कार का भी वैसा है, उसको लगता है कि अभी मेरे पास छोटी कार है इसलिए मेरे पास शायद आनंद नहीं आ रहा है, बड़ी कार लेता हूँ, है ना, तो बड़ी कार ले लेता है। बड़ी कार लेने के बाद उसको लगा मेरे पास बड़ी कार आ गई, देखो मेरे पड़ोसी के पास छोटी कार है, वो 4-5 महीना उसको आनंद में जाता है। बाद में वही, अरे वो छोटी कार में भी जाना था मुझे, छोटी कार में भी भारत की जो ट्रैफिक थी, और अभी बड़ी कार आए अभी भी ट्रैफिक है। उल्टा लोग गाली देते, अरे इतनी बड़ी कार ले लिया, इतने बड़े रास्ते को ले लिया, है ना, गाली देते उन लोग। और क्योंकि संसार में ईर्ष्या है, आपके पास बड़ी कार आ गई तो लोग घूर घूर के देखते हैं, कभी कभी 2 व्हीलर वाला आके गाली लेके जाता है, फालतू में गाली देता है वो, और कुछ नहीं उसको, वो ईर्ष्या है उसके मन में, बड़ी कार लेके जा रहा है वो फालतू में गाली देता है। आए एक 2 व्हीलर दूसरे 2 व्हीलर को कभी गाली देगा नहीं, वो आप भी 2 व्हीलर पे जा रहे हो, वो भी 2 व्हीलर पे जा रहे, कभी गाली नहीं देगा, है ना। मिजरी लॉस कंपनी, वो भी दुखी आप भी दुखी है, लेकिन कार वालों को कार वालों को जरूर गाली देगा वो। तो कभी कभी हम भी गाड़ी में रहते, ड्राइवर को बोलता है शांत रहो, वो फालतू में गाली देके गया, तुमको क्या करना है, ग्लास बंद कर दो, है ना। तो इस तरह ये संसार है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा उसको तथाकथित सुख दिखा कि ये दुखी वालों को बड़ा दुख लगता है ना। भौतिक जगत का अर्थ है पर दुखी सुखी, दूसरों को दुख में देखकर उसको सुख लगता है। पर सुखी दुखी, दूसरों को सुख में देखकर उसको दुख लगता है, ये भौतिकवादी का जीवन। लेकिन भक्त का जीवन अलग है, वो है ना, भक्त का जीवन होता है पर दुखी दुखी, दूसरों का दुख देखकर इसको भी दुख लगता है, लेकिन पर सुखी सुखी। और किसी दुखी व्यक्ति ने हाथ में हरे कृष्ण माला ले लिया तो इसको बड़ा आनंद आता है, अभी सुखी हो गया है ना। इसलिए भक्त लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं दूसरों को माला देने का, दूसरों को हरे कृष्ण कराने का, दूसरों को पुस्तक देने का प्रयास करते रहते हैं बड़ा, कि दूसरों को सुखी करने का, क्योंकि वो सुखी हो जाएंगे तो इसको सुख का अनुभव होता है ना। तो इस तरह भक्त का जीवन है। भौतिकवादी भक्त, भौतिकवादी लोगों का और भक्तों का जीवन पूरा विपरीत रहता है। तो जब कोई जीव भक्तों के संग में आ जाता है, तीनों गुणों के संग में रहते हुए बड़ा दुखी रहता है, लेकिन जब एन प्रकार है ना वो भक्तों के संग में आ जाता है तो फिर उसका जीवन बदल जाता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। अगर थोड़ा सा भी भक्तों का संग अगर उसको मिल जाता है और उसमें भी हरे कृष्ण भक्तों का संग मिल जाता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हम देखते हैं कि कई साल पहले हम लोग हरे कृष्ण भक्तों के संग में या हरे कृष्ण संस्था के संग में नहीं थे तो बड़े दुखी थे, लेकिन कुछ साल पहले हम भक्तों के संग में आ गए तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया है ना। अभी हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उठना चाहिए। और तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम शुद्ध सत्व का संग करते हैं, ये सत्वगुण से भी ऊपर होता है, शुद्ध सत्व, ये गुण आध्यात्मिक है सत्वगुण। बाकी तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये भौतिक गुण है, लेकिन शुद्ध सत्व आध्यात्मिक है। और शुद्ध सत्व का हम संग करेंगे तो प्रकृति के तीन गुण से हम बाहर चले जाएंगे। और प्रभुपाद जी ने हमें अव्यभिचारी भक्ति दी है ना, मतलब शुद्ध भक्ति दी है, शुद्ध भक्ति के कार्यकलाप दिए है। और अभी कार्तिक महीना है और कार्तिक महीना भक्ति प्राप्त करने के बड़ा अनुकूल है। इसमें हम जितने भक्ति के कार्य करेंगे इसका हजारों गुना फल हो जाता है। तो एक महीने में हम प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति देने के लिए और खुद भक्ति करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कार्तिक महीना। और अभी हम वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन तो भगवान का धाम है, भगवान की कृपा से ही हमें उनके घर में प्रवेश मिलता है। किसी व्यक्ति के ऑफिस में हर एक को प्रवेश मिल सकता है, लेकिन घर में उस व्यक्ति के परमिशन से ही प्रवेश मिलता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि रेलवे का और हवाई जहाज का टिकट काटकर हम वृंदावन जा नहीं सकते हैं, हम भक्तों की कृपा से वृंदावन जा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की दया से कृपा से हम लोग प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़े हुए हैं और हमें हर साल वृंदावन जाने का मौका मिलता है। तो वृंदावन आध्यात्मिक धाम है, भगवान से अभिन्न है। और प्रायः यहाँ पर जहाँ बैठे हैं प्रायः अभी वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में हमें कार्तिक महीने में भगवान से शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। अभी तक हमने भगवान से शुद्ध भक्ति नहीं मांगी इसलिए हम भौतिक जगत में है। अभी हमें मौका मिला है तो जितना समय हम वृंदावन में रहे या वृंदावन चंद्र में रहे तो वहां पर हमें भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि जो साधारण रूप से भगवान से भक्ति नहीं मांगता है इसलिए भौतिक जगत में रहता है। तो भक्ति मांगेंगे तो हम भगवान का धाम में जाएंगे। वृंदावन धाम भगवान का अपना खुद का घर है, घर में हमें मौका मिल रहा है। कई लोग मथुरा जाके वापस चले जाते हैं, वृंदावन जा नहीं पाते हैं, तो हम वृंदावन जाएंगे, भगवान की वहाँ पर गुह्य लीला हुई है वहाँ पर जाएंगे। और अगर भगवान से शुद्ध भक्ति मांगेंगे और शुद्ध भक्ति भगवान ने दी है हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ही है कि हे भगवान आप हमें आपकी भक्ति में आपकी सेवा में लगाइए। तो ये तो हमें हरे कृष्ण गाते रहना चाहिए और प्रभुपाद जी की संस्था में सेवा करते रहना चाहिए। चलो प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय।